काली शक्तियों का मालिक उन तपस्वी को देखकर काफी हैरान था और सोच रहा था कि भला हवा सूर्य की किरण ग्रहण करके कोई जीवित कैसे रह सकता था। वैसा ही करते हुए काली शक्तियों का मालिक उस सर्प के महाराज के साथ उस तपस्वी की दाढ़ी को हटाते हुए पहुंच चुका था। तभी काली शक्तियों के मालिक ने देखा कि वो सर्प महाराज उस तपस्वी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बैठ चुका था। तब उस काली शक्तियों के मालिक ने भी उसकी देखा देखी वैसा ही किया और वो उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी उस तपस्वी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। वो काली शक्तियों का मालिक तपस्वी का हाथ देखकर बिल्कुल चुप होकर बैठ गया और कुछ ही देर हुई कि अचानक काफी जोर से आंधी चलने लगी और उस गुफानुमा घर की मिट्टी नीचे गिरने लगी। उस मालिक ने देखा कि उस आंधी का उस सर पर कोई असर नहीं हुआ था। वो इसी तरह हाथ जोड़कर बैठा रहा तो उसे भी वैसे ही बैठे रहना पड़ा। आंधी आने के कुछ ही क्षणों के बाद उस तपस्वी ने अपनी आंखें खोल दीं। अचानक उनकी आंखें खुलते ही उनमें से आग सी रोशनी निकलने लगी और जिस दाढ़ी से उनकी पूरी गुफा भरी हुई थी वो धीरे धीरे उस आग में जलने लगी। काली शक्तियों का मालिक ये सब देखकर काफी हैरान था क्योंकि वो आग इतनी तेजी से दाढ़ी को जला रही थी, बेहद तेजी से, और केवल कुछ ही पलों में जितनी दाढ़ी मूछ उस गुफा में थी वो जलकर राख हो चुकी थी। सर्प और काली शक्तियों का मालिक हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वो तपस्वी उठे और बोले, बता क्यों आया है यहाँ, क्या जानने आया है, जल्दी बता, क्योंकि आज 100 वर्षों के बाद हमारे मोक्ष लेने का समय आ चुका है। तब सर्प के इशारे पर वो काली शक्तियों का मालिक आगे बढ़ा और बोला, तपस्वी महाराज, मुझे वो तिलिस्मी पत्थर चाहिए लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। और पहले तो उस पत्थर का एक रक्षक था लेकिन अब जैसे दो रक्षक पैदा हो चुके हैं, न जाने ये दूसरा रक्षक कहाँ से आ गया है। हे तपस्वी महाराज, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। आखिर क्यों मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ? क्यों जब भी मैं उस अमन के पास जाता हूँ मेरा दम घुटने लगता है? और अभी वो काली शक्तियों का मालिक कुछ और भी कहना चाहता था कि तभी उस तपस्वी ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया और बोला, तो जो चाहता है वो तुझे कभी नहीं मिल पाएगा। तिलिस्मी पत्थर शुरू से ही सफ़ेद जिन्नों के हिस्से में था और अमन और मानसिंह राठौर दो अलग अलग जिस्में जरूर हैं लेकिन उनकी रूह, उनकी आत्मा एक है और वे दोनों इतने शक्तिशाली हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता, याद रखना। और जल्दी ही उनके यहाँ तिलिस्मी पत्थर का एक और रक्षक पैदा होने वाला है जिसके पास इतनी शक्तियाँ होंगी कि उसे कोई नहीं हरा पाएगा। और याद रखना, जितना तुम उस तिलिस्मी पत्थर के पीछे जाते जाओगे तुम्हारा अंत उतना ही करीब होता चला जाएगा। उस तपस्वी की बात सुनकर काली शक्तियों का मालिक गुस्से से भर उठा और वो बड़े ही घमंड में बोला, बस ये क्या लगा रखा है आपने कि वो मार देगा, रक्षक पैदा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो तिलिस्मी पत्थर तो मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा और उस तिलिस्मी पत्थर का प्रयोग करके मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा और फिर सभी लोगों पर मेरा ही राज होगा। मैं यहाँ आपसे पूछने आया हूँ कि वे दोनों कैसे हो सकते हैं, अमन और मान का क्या राज है, लेकिन आपने तो मुझे एक अलग ही कहानी सुना दी है। वो तपस्वी उसकी बातों से गुस्से से भर उठा। उस काली शक्तियों के मालिक का इस तरह से बोलना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया लेकिन उस तपस्वी को ना चाहते हुए भी अपना प्रण पूरा करना था। उसका प्रण था कि इन 100 वर्षों में अगर कोई भी उसके पास आता है तो वो उसकी मदद जरूर करेगा और इतना ही नहीं अपनी सारी शक्ति वो उसे दे देगा। उस काली शक्तियों के मालिक का जो गुरु था वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अगर ये वहां गया तो मजबूरन उस तपस्वी को अपनी शक्ति इसे देनी ही होगी। तब वो तपस्वी बोला, देख तू मेरे पास आया है तो अपनी शक्ति का ज्यादा घमंड मुझे मत दिखा, मैं चाहूँ तो क्षण भर में तुझे भस्म कर सकता हूँ। उस तपस्वी की बात सुनकर वो काली शक्तियों का मालिक एक पल के लिए कांप गया लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि ये तपस्वी जरूर किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ है, वरना अब तक तो ये तपस्वी इसे मार चुका होता। वहीं दूसरी ओर अमन और मान अपनी माँ को लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुँच चुके थे। वहाँ जाते ही अमन ने अपने दादा महाराज को बुलाने का जाप शुरू कर दिया और अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि जिन महाराज वहाँ पधार चुके थे। अमन और मान दोनों उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो चुके थे। जिन महाराज ने उनकी शक्ल देखकर ही सारी बातें जान ली थी। तभी जिन महाराज ने न जाने कहां से कुछ पानी की बूंदें करिश्मा जी के ऊपर डाल दी और करिश्मा जी एकदम होश में आ गईं और अपने सामने जिन महाराज को देखकर जल्दी से उन्होंने भी उनके सामने हाथ जोड़ लिए। तब जिन महाराज ने कहा, क्या हुआ करिश्मा, क्या कहना चाहती हो तुम? तब करिश्मा जी ने एक नज़र अमन को देखा तो एक नज़र मान को देखा और बोली, आपको तो सब कुछ पता चल ही गया होगा जिन महाराज, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अमन तारा से मोहब्बत करता है लेकिन अब मान भी तारा से मोहब्बत का दावा करता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भला दो आदमी कैसे एक लड़की से शादी कर सकते हैं। तब जिन महाराज ने एक नज़र अमन और मान को देखा और बोले, मैं जानता हूँ तुम दोनों सच्ची मोहब्बत करते हो तारा से, लेकिन ये बात तुम दोनों को कबूल करनी होगी कि तुम दोनों इस बात को लेकर आपस में कोई झगड़ा नहीं करोगे। करिश्मा, तुम्हें जल्द से जल्द इन दोनों का विवाह तारा से करवाना होगा। जैसे ही जिन महाराज ने ये कहा, वे तीनों शॉक्ड हो चुके थे और बुरी तरह से एक दूसरे को देखने लगे थे। अमन को कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा था और वो खुद को रोक नहीं पाया और जिन महाराज के बोलते बोलते वो उनके बीच में बोल पड़ा, लेकिन दादा महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? अमन से मोहब्बत करता हूँ तो आप मान की शादी भी तारा से कैसे कर सकते हैं? अमन के बीच में बोलने की वजह से जिन महाराज काफी गुस्सा हो चुके थे और उन्होंने एक सुलगती सी नजर अमन पर डाली। अमन पर उनकी नजर पड़ते ही अमन के अंदर आग सी जलने लगी। अमन धीरे धीरे आग में जलने लगा, वो बुरी तरह से कराह उठा। करिश्मा जी और मान अमन की ये हालत देखकर बेचैन हो उठे और वे दोनों अपने अपने घुटनों के बल बैठकर जिन महाराज से अमन की ओर से माफी मांगने लगे थे। अमन ने देखा कि उसका भाई भी इसके लिए माफी मांग रहा था तो अमन का दिल पसीज गया और वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर मेरा भाई भी तारा से मोहब्बत करता है तो मैं उन दोनों के रास्ते से हट जाऊंगा और इन दोनों की शादी करा दूंगा। जिन महाराज अमन के मन की बात सुन चुके थे और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। अमन अपना पेट पकड़ता हुआ खड़ा हो गया। तब अमन मान के पास गया और बोला, मेरे भाई, मुझे एहसास हो गया है कि तू तारा से कितनी मोहब्बत करता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तेरी शादी तारा से कराऊंगा और तुम दोनों को एक करके हमेशा के लिए तुम दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। मान अपने भाई का बड़ा दिल देखकर पिघल चुका था और उसने कहा, नहीं भाई, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही तो आप दोनों के बीच आया हूँ, मैं ही आप दोनों की जिंदगी से चला जाऊंगा। करिश्मा जी उन दोनों को बड़े ही प्यार से देख रही थी, जहाँ वे ये सोच सोच कर डर रही थी कि कहीं एक ही लड़की से मोहब्बत के चक्कर में ये दोनों भाई आपस में न झगड़ बैठे और भाई से सीधा दुश्मन न बन बैठे। यही सोच सोच कर वे हलकान हो रही थी और वे यही सोचते हुए बेहोश भी हो गई थी, लेकिन अब दोनों भाइयों की बात सुनने के बाद उनके दिल को तसल्ली हो गई थी।
तभी उन दोनों भाइयों की बहस के बीच जिन महाराज बोले, मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुम दोनों को ही उस लड़की से शादी करनी होगी क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। केवल तुम्हारे जिस्म अलग अलग हैं, लेकिन तुम दोनों में आत्मा एक ही है। जिन जाति की भलाई के लिए तुम दोनों को ही उस लड़की से शादी करनी होगी, क्योंकि बहुत जल्द जिन जाति को एक रक्षक की जरूरत पड़ने वाली है जो तुम तीनों के मिलन से पैदा होगा, क्योंकि तिलिस्मी पत्थर पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जिससे सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों का बच्चा, जो कि सफेद जिन्नों का रक्षक है, वही बचा सकता है। केवल वही इस आने वाले खतरे को टाल सकता है। तीनों बड़ी हैरानी से जिन महाराज की बात सुन रहे थे। तब करिश्मा जी बोल पड़ी, लेकिन जिन महाराज, ऐसा कौन सा खतरा है जिससे अमन या मैं नहीं लड़ सकते? ऐसा क्या होने वाला है? काले जिन्नों में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है जो हमसे तिलिस्मी पत्थर छीन सके? तब जिन महाराज बोले, करिश्मा, हम तुम्हें केवल आने वाले कल से आगाह कर रहे हैं। हम तुम्हें ये नहीं बता सकते कि कौन सा खतरा जिन्नों पर मंडरा रहा है। हम जो कह रहे हैं, केवल उस बात पर ध्यान दो, अमन और मान की शादी जल्द से जल्द उस लड़की से करवा दो, वो भी आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर। ये सुनते ही उन तीनों के चेहरों पर हवाइयां दौड़ने लगी। भला शादी 3 दिनों के अंदर कैसे हो सकती थी? तारा को भी तैयार करना था। तब करिश्मा जी एक बार और बोल पड़ी, लेकिन जिन महाराज, वो लड़की शादी के लिए कैसे मान सकती है? वो भी एक के नहीं दो दो आदमी के साथ। वो एक इंसान है, वो कभी नहीं मानेगी। हम उसे कैसे ये सारी बात समझाएंगे? तब जिन महाराज बोले, तुम्हें उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने आंखें बंद करके कुछ फूंकना शुरू कर दिया और जल्दी ही उनके हाथ में एक फल था। जिन महाराज ने वो फल करिश्मा जी को देते हुए कहा, तुम ये फल तारा को खिला देना, उसके बाद वो तुमसे कोई सवाल नहीं करेगी और वो दोनों भाइयों से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे ही करिश्मा जी ने ये सुना तो वो हैरान रह गई। तब अमन ने कहा, लेकिन दादा महाराज, इस तरह से तो ये उस लड़की के साथ धोखा होगा, उसके अपने वश में करके शादी के लिए तैयार कराना तो गलत होगा। तब जिन महाराज मुस्कुराए और बोले, मुझे अच्छा लगा तुमने ये बात सोची, ये बात सोचकर तुमने अपने नेक दिल होने का सबूत दिया है।